आइए आज हम क्युमिंगतांग दल का चीन में उत्कर्ष पर चर्चा करते हैं। क्युमिंगतांग दल मांचू शासन का अंत कर लोकतंत्र रिपब्लिक की स्थापना करने के उद्देश्य से डॉक्टर सन्यात सेन ने तुंग मेंग हुई नाम की जिस क्रांतिकारी संगठन किया था उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। 1911 की राज क्रांति से पूर्व यह संस्था एक गुप्त समिति के रूप में थी। रिपब्लिक की स्थापना के बाद इसे गुप्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह गई, पर जब 1913 में युआन शिकाई ने पेकिंग सरकार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तो डॉक्टर सन्यात सेन के दल के लिए अपना कार्य कर सकना कठिन हो गया। रिपब्लिक की स्थापना के बाद 1912 में डॉक्टर सन्यात सेन ने अपने अनुयायियों को क्युमिंगतांग दल के रूप में संगठित कर लिया था। हिंदी में इस दल को राष्ट्रीय जनता दल कह सकते हैं। युआन शिकाई ने क्युमिंगतांग दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और अनेक लोगों को चीन से भागकर विदेशों में आश्रय लेने की आवश्यकता हुई थी। युआन शिकाई का चीन पर एकाधिपत्य देर तक कायम नहीं रह सका। 1916 में उसकी मृत्यु के बाद चीन के विविध प्रदेशों में अव्यवस्था शुरू हो गई। विभिन्न सिपहसालार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों के समान आचरण करने लगे। इस स्थिति से लाभ उठाकर डॉक्टर सन्यात सेन ने दक्षिणी चीन में अपनी शक्ति की पुनः स्थापना की और कैंटन को राजधानी बनाकर क्युमिंगतांग दल की सरकार का संगठन किया। 1916 में कैंटन की इस क्युमिंगतांग सरकार के उत्कर्ष का आरंभ हुआ और कुछ ही वर्षों में प्रायः संपूर्ण चीन इस सरकार के शासन में आ गया। आइए अब इस संगठन पर चर्चा करते हैं। शुरू में क्युमिंगतांग दल का संगठन सुव्यवस्थित नहीं था। जो लोग डॉक्टर सन्यात सेन को अपना नेता मानते थे, उसके प्रति भक्ति रखते थे, वे ही इस दल में सम्मिलित थे। सर्वसाधारण जनता में इसके सिद्धांतों का अधिक प्रचार नहीं था। यही कारण है कि कैंटन सरकार का प्रभुत्व दक्षिणी चीन में भी सर्वत्र स्वीकृत नहीं किया जाता था। दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों के सिपहसालार जिस अंश तक उचित समझे उसी अंश तक वे कैंटन सरकार के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस दशा में डॉक्टर सन्यात सेन ने क्युमिंगतांग दल के पुनः संगठन पर ध्यान दिया और इस कार्य में रूस के कम्युनिस्ट दल का सहयोग लिया गया। 1917 में रूस में क्रांति द्वारा बोल्शेविक या कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हो गई थी और रूस की यह नई सरकार समाज संगठन के कतिपय नवीन सिद्धांतों के अनुसार अपने देश के शासन सूत्र को संचालित करने में तत्पर थी। 1923 में डॉक्टर सन्यात सेन ने रूस की सरकार के सहयोग को प्राप्त किया और माइकल बोरेडिन नामक रूसी कम्युनिस्ट क्युमिंगतांग सरकार का सलाहकार बनकर कैंटन पहुंच गया। उसने क्युमिंगतांग दल के पुनः संगठन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके लिए रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को आदर्श के रूप में रखा गया। यह व्यवस्था की गई कि चीन में सर्वत्र क्युमिंगतांग दल की शाखाएं स्थापित की जाए और इन स्थानीय कमेटियों के बाकायदा सदस्य हों जो एक निर्धारित प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया करें। स्थानीय कमेटियां अपने पदाधिकारियों को स्वयं निर्वाचित करें और 2 सप्ताहों में एक बार स्थानीय कमेटी की नियमित रूप से बैठक की जाए। कमेटियों के आय व्यय का हिसाब नियम पूर्वक रखा जाए और उसके ऑडिट की भी व्यवस्था की जाए। स्थानीय कमेटियों का यह प्रधान कर्तव्य हो कि वे अपने अपने क्षेत्र में क्युमिंगतांग दल के सिद्धांतों का प्रचार करें। स्थानीय कमेटियों के ऊपर तहसील, जिला और फिर प्रांत की कमेटियों का संगठन किया गया। सबसे ऊपर अखिल चीन क्युमिंगतांग कमेटी बनाई गई जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय कमेटियां किया करती थीं। यह भी व्यवस्था की गई कि क्युमिंगतांग दल की महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाया करे। 1924 में क्युमिंगतांग दल की महासभा का पहला अधिवेशन बड़े समारोह के साथ किया गया जिसमें सब स्थानों के प्रतिनिधि एकत्र हुए, पर चीन की आंतरिक राजनीतिक अव्यवस्था के कारण 1925 में कोई अधिवेशन होना संभव नहीं हुआ। दूसरा अधिवेशन 1926 में हुआ और तीसरा 1929 में कुमिंगतोंग महासभा का अध्यक्ष डॉक्टर शन्यात सेन को चुना गया। यह व्यवस्था की गई कि वह आजीवन दल के प्रधान पद पर रहें। डॉक्टर शन्यात सेन ने चीन में लोकतंत्र रिपब्लिक की स्थापना के लिए जो असाधारण नेतृत्व प्रदर्शित किया था और कुमिंगतोंग दल में उनकी जो विशिष्ट स्थिति थी उसे दृष्टि में रखकर यह व्यवस्था की गई कि दल की महासभा में स्वीकृत किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का उन्हें अधिकार हो और केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की नियुक्ति उनके सहमति के द्वारा ही किया जाया करे। आइए अब हम कुमिंगतोंग दल के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। 1924 में जब कुमिंगतोंग दल की पहली महासभा हुई तो उसमें दल के सिद्धांतों व आदर्शों को स्वीकृत किया गया। इनका आधार डॉक्टर शन्यात सेन के वे विचार थे जिन्हें उन्होंने समय समय पर अपने व्याख्यानों तथा पुस्तिकाओं में प्रतिपादित किया था। कुमिंगतोंग दल के सिद्धांत को इस प्रकार संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। पहला विचार था राष्ट्रीयता, इस दल का प्रथम मुख्य सिद्धांत था। डॉक्टर शन्यात सेन का यह विश्वास था कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भलीभांति विकास नहीं होगा तब तक ना तो देश के शासन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और न ही चीन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। वह बहुधा कहा करते थे कि चीनी जनता की दशा रेत के एक ऐसे ढेर के समान है जिसके सब कण एक दूसरे से पूरी तरह मिलते तो हैं पर जिन्हें एक दूसरे से मिलाकर एक शक्ति बना देने के लिए सीमेंट का अभाव है। सांस्कृतिक दृष्टि से चीन में जो एकता है उसका यह परिणाम अवश्य हुआ है कि चीन में विविध निवासी रेत के कणों के समान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर राष्ट्रीयता ही ऐसा तत्व है जो सीमेंट के समान उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर एक जबरदस्त ताकत बना सकता है। डॉक्टर शन्यात सेन यह भी अनुभव करते थे कि चीन में राष्ट्रीयता को विकसित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि चीनी लोगों में विदेशी राज्यों के प्रभुत्व के विरुद्ध भावना को उत्पन्न किया जाए। डॉक्टर शन्यात सेन विदेशी राज्यों के विरोधी नहीं थे पर वह विदेशी साम्राज्यवाद को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। वह कहा करते थे कि विदेशी राज्य चीन को एक ऐसी स्थिति में लाते जा रहे हैं जिसके कारण उसकी दशा औपनिवेशिक राज्यों से भी हीन होती जाती है। चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनने से तभी बचाया जा सकता है जबकि चीन के लोग अपने देश के प्रति प्रेम करने लगें, अपने कुल एवं गांव के प्रति भक्ति की जो भावना उनके हृदय में विद्यमान है वह चीनी राष्ट्र के प्रति हो जाए। निसंदेह चीन में 5 विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है पर यदि चीनी राष्ट्र में इन 5 जातियों को एक सदृश स्थान प्राप्त हो तो चीन के सब निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित कर सकना जरा भी कठिन नहीं होगा। दूसरा सिद्धांत था लोकतंत्र शासन, कुमिंगतोंग दल का दूसरा सिद्धांत था। मंचू शासन का अंत कर रिपब्लिक की स्थापना करने में डॉक्टर शन्यात सेन का विशेष नेतृत्व था पर वह यह भली भांति अनुभव करते थे कि चीन की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि चीन की सरकार बहुत मजबूत हो, जनता का उस पर नियंत्रण अवश्य हो पर सरकार के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह देश में शांति और व्यवस्था को भली भांति कायम रख सके। इसके लिए डॉक्टर शन्यात सेन का यह विचार था कि लोकतंत्र शासन की पूर्ण रूप से स्थापना होने से पूर्व चीन को 3 दशाओं में से गुजरना होगा। सबसे पहले केंद्रीय चीनी सरकार को अपनी सैन्य शक्ति को इतना प्रबल बनाना होगा कि वह विविध प्रांतीय सिपहसालारों के साथ लोहा लेकर उन्हें अपना वशवर्ती बना सके। सैन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा जब चीन एक केंद्रीय सरकार के आधिपत्य में आ जाएगा तो धीरे धीरे जनता को लोकतंत्र शासन की शिक्षा देनी होगी। केंद्रीय सरकार में लोकतंत्र संस्थाओं की स्थापना से पूर्व प्रांतों और जिलों में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना होगा। प्रांतीय सिपहसालारों की सत्ता का अंत होकर जो जो प्रदेश केंद्रीय सरकार की अधीनता में आते जाएंगे उनमें लोकतंत्र शासन का आरंभ किया जाएगा और इस शासन में कुमिंगतोंग दल की प्रधानता रहेगी। यह दल चीन में इतना सुव्यवस्थित और संगठित था कि यही देश के शासन को संभाल सकता था। जब प्रांतों में लोकतंत्र शासन भली भांति विकसित हो जाएगा तब केंद्रीय सरकार को भी लोकतंत्र सिद्धांतों के अनुसार संगठित करना संभव होगा। तीसरा प्रमुख सिद्धांत था जनता की आर्थिक उन्नति। क्युमिंगतोंग दल का सिद्धांत था कि जनता की आर्थिक उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। चीन की बहुसंख्यक जनता गांवों में निवास करती थी और खेती पर निर्भर करती थी। अतः डॉक्टर शन्यात सेन का यह विचार था कि गांव के जमींदारों और किसानों में जो भारी आर्थिक विषमता है वह दूर होनी चाहिए और भूमि के स्वामित्व के संबंध में समता की स्थापना की जानी चाहिए। मंचू शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्रीयता के साथ साथ भूमि के स्वामित्व में समानता का सिद्धांत भी डॉक्टर शन्यात सेन के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग था, जिसे क्युमिंगतोंग दल ने स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर शन्यात सेन का यह भी विचार था कि क्युमिंगतोंग दल को गांवों की किसान जनता की आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसी से चीन की आर्थिक समस्या को हल किया जा सकता है। डॉक्टर शन्यात सेन कम्युनिस्ट दल के सदस्य नहीं थे, यद्यपि उन्होंने अपने दल का संगठन करते हुए रूस के कम्युनिस्ट नेताओं का सहयोग प्राप्त किया था। शुरू में इस दल में चीनी कम्युनिस्ट भी बड़ी भारी संख्या में सम्मिलित हुए, पर शीघ्र ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कम्युनिस्ट लोगों के लिए क्युमिंगतोंग दल में रहना संभव नहीं रहा। आइए हम डॉक्टर शन्यात सेन और क्युमिंगतोंग दल के बारे में विचार करें। 1920 में क्युमिंगतोंग दल ने अपनी सरकार को कैंटन में सुदृढ़ रूप से स्थापित कर लिया था। 1923 तक माइकल